ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने सदा ही मालदीव के लिए प्रथम संकट मोचक की भूमिका निभाई है। नई दिल्ली में मालदीव के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद मोइजू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने सदा ही एक पड़ोसी के रूप में अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। उन्होंने कहा कि भारत ने मालदीव के लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पेयजल उपलब्ध कराया और कोविड के दौरान टीके भी दिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं। भारत मालदीव का निकटतम पड़ोसी और करीबी मित्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी पड़ोस प्रथम नीति और सागर विजन में भी मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। डॉक्टर मोइजो ने कहा कि उन्होंने तथा प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों की सफल विकास यात्रा पर नजर डालते हुए विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने मालदीव में हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। मालदीव में रुपे कार्ड भुगतान का भी शुभारंभ किया गया। दोनों राष्ट्रों के बीच भ्रष्टाचार से निपटने, न्यायपालिका, युवा तथा खेल के क्षेत्रों सहित कई समझौते भी हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार के बेहतर केंद्र राज्य समन्वय से देश से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म किया जा रहा है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में वामपंथ उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। गृहमंत्री ने कहा कि नक्सली हिंसा की घटनाएं 16,000 से घटकर लगभग 7,700 रह गई हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले साल तक यह संख्या और कम हो जाएगी। श्री शाह ने कहा कि नागरिकों और सुरक्षा बलों की मृत्यु में 70% की कमी आई है। श्री शाह ने नक्सलवाद से जुड़े सभी युवाओं से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में आने की अपील की। उत्तर पूर्व जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ समेत नक्सल प्रभावित राज्यों से करीब 13,000 युवा हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि देश की स्वास्थ्य प्रणाली ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज UHC हासिल करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और आवश्यक सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के एक कार्यक्रम में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 12 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा की 90-90 विधानसभा सीटों पर कल मतगणना होगी। इसके लिए जम्मू कश्मीर के 873 और हरियाणा के 1031 चुनावी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच 20 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 10 वर्ष के बाद हुए चुनाव में बड़ी संख्या में मतदान हुआ। हरियाणा में 90 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय आने वाले दिनों में 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री पासवान ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के दौरान मूल्यवर्धन सुनिश्चित करते हुए अपशिष्ट को कम करने के लिए 50 विकिरण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विलियम विनिमय में इसकी भूमिका के लिए विक्टर एम्बोस और गैरी रुबकोन को फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार चुना दिया जाएगा। माइक्रो आरएन एक मौलिक सिद्धांत है जो तय करता है कि जीन गतिविधि को कैसे नियंत्रित किया जाए। घरेलू शेयर बाजार लगातार छठे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 638 अंक की गिरावट के साथ 81,050 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 218 अंक कम होकर 24,795 पर बंद हुआ। वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर कल से लद्दाख के थोई से 7,000 किलोमीटर लंबी वायु वीर विजेता कार रैली आयोजित की जाएगी। इसका समापन 29 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के त्वांग में होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 अक्टूबर को नई दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक से इस रैली को रवाना किया था। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में शारजाह में आज शाम 7:30 बजे ग्रुप बी के मैच में इंग्लैंड का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दोनों ही टीमों ने एक एक मैच खेले हैं और उसमें जीत हासिल की है। दक्षिण अफ्रीका ने पहले मैच में वेस्टइंडीज को और इंग्लैंड ने बांग्लादेश को हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।